ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की उम्र अब बढ़ रही है और जनसंख्या बुजुर्ग हो रही है। उम्र के साथ साथ एक अच्छी एज्ड केयर की सुविधा मिले, इस पर भी चिंता होने लगी है। बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है कि यहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसका लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है। तो आइए आज जानते हैं कुछ इसी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में एज्ड केयर क्षेत्र पर इस समय काफी दबाव है कि वो इसकी बढ़ती मांग को पूरा करता रहे। ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि 2055 तक बुजुर्ग होती जनसंख्या लगभग 40 मिलियन तक पहुंच जाएगी और इसमें एक चौथाई 65 वर्ष से ऊपर की होगी। पिछले 15 सालों में एज्ड केयर सर्विसेज में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और एक बड़ा बदलाव है माई एज्ड केयर कॉल सेंटर बनना और एक वेबसाइट लॉन्च हुई है जुलाई 2015 से, जहां बुजुर्ग लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार एज्ड केयर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल ऑफ न्यू साउथ वेल्स मल्टीकल्चरल एजिंग एंड डिसेबिलिटी एक्सेस प्रोग्राम ऑफिसर टेरी लियोलॉस इसके बारे में समझाती हैं।
So if you are over 65, you are aging and you need support at home, that would be the first tick that you'll need. If you have a Medicare card, that's a good indicator that you're probably eligible to be able to apply. But the best thing to do, call the My Aged Care Call Centre, tell them a little bit about you and what your needs are, and they'll be able to support you and help you along the way to decide whether or not you're eligible for these services. Many people think that they're not, and they call, and they're very surprised to find out the sort of services they can access here in Australia.
माई एज्ड केयर सर्विसेज कई स्तर के कामों की सहायता करती है, जैसे कि लॉन को ठीक करना, घास काटना, सफाई करना, शॉपिंग करना और घर बार आदि की सुविधाओं और आवास प्राप्त करने में सहायता आदि। इन सेवाओं के पेमेंट्स आदि की सुविधाओं को भी व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है और टेरी बताती हैं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए भी सहायता होती है।
There are options of paying up front. There are payment options where you can pay every month or with every service visit. But they also have hardship options. So if you're finding it hard to pay, if you're financially in a position which is difficult, and many of us share that space at the moment, it's always important to let the service know you're finding challenges and that you will need some sort of alternative ways to pay your payment. No one here in Australia who needs aged care but financially can't afford it is ever left off the support, they don't fall through the cracks. It's important that you let people know so they can accommodate you.
The Federation of Ethnic Communities Council of Australia, yani FECCA ki 2020 Vision for Older Cald Australians, is naam ki report batati hai ki pravasi samudayon mein badi umr ke log apekshakrit adhik hain aur inki sankhya bhi tezi se badh rahi hai. ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि कुछ ही सालों में 30% जनसंख्या के लोग 65 वर्ष या उससे बड़े होंगे और ये कैल्ड यानी कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स समुदाय के लोग होंगे। FECCA की हेल्दी एजिंग अध्यक्ष मेरी पैटर्सन का कहना है कि वो प्रवासी समुदायों की आवश्यकताओं पर आवाज उठा रहे हैं।
What we're essentially saying is that called Australians need to understand what services are available to them. They need to be able to communicate those their needs in their own language, and they also need to be able to talk to people so that they can understand what services are available so that they can make informed choices.
My aged care की जानकारी कई भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के एडवोकेट्स विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी जानकारी और इसकी सेवाओं को पाना काफी कठिन और मुश्किल है। कम्युनिटी सलाहकार और पूर्व एज्ड केयर वर्कर राफेला लोपेज का कहना है कि कंप्यूटर की जानकारी एक बहुत बड़ी चुनौती है।
People who are over 70 and they did not have access to a technological education, so they're not computer savvy, and they still going to have a lot of issues in using the service.
यूं इस सिस्टम के लिए सहायता उपलब्ध है।
It is important, however, that whenever you are concerned as someone who speaks a second language, contact your local migrant resource centre, contact your local ethnic communities council or your multicultural worker or a worker who speaks your language. Let them know through your social support groups, I have this need and I don't know where to go, and they'll be able to show you how to access My Age Care and how to get the best support possible.
81 वर्षीय रिस्टी सैंज, जो मूल रूप से स्पेन की हैं, मेलबर्न में अकेली रहती हैं। अभी हाल ही में उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने अस्पताल जाने से पहले एज्ड केयर सर्विसेज का उपयोग किया। वो कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करती, इसलिए उन्होंने फोन द्वारा स्थानीय कौंसिल से संपर्क किया, लेकिन वो बताती हैं कि ये आसान नहीं था।
I had to make a lot of phone calls. The phone number they gave me ended up being in Queensland. From Queensland, I think they took me to Canberra. Well, it took me a lot of phone calls until they finally came.
अब ऑपरेशन के बाद रिस्टी अब नई सुविधाओं का अपने घर पर ही लाभ उठा सकती हैं, जिसके द्वारा वो नहाने और अन्य दिनचर्या का काम कम फीस पर कर सकती हैं। अब उन्हें इस सिस्टम की समझ आ गई है और उनके पैकेज में है हर दूसरे हफ्ते उनके घर की सफाई होना, और इसके लिए वो देती हैं $15 प्रति माह। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सहायता ली शॉपिंग के लिए भी, और एक असेसर उनके घर आते हैं और चाहे इंग्लिश रस्ती की प्रथम भाषा तो नहीं है, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूरी जानकारी समझा पाती हैं।
In that interview, they asked me whether I could drive, and I said yes. But at the moment, because I'm like this, I need someone who could take me shopping. They asked me, for how long? And I said, at least for 6 to 8 weeks, and then I'll be able to drive back again. So now she took everything in writing, and I'm waiting for them to tell me yes or not.
यूं कई सांस्कृतिक बाधाएं आती हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग एज्ड केयर सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। रफेला लोपेज का कहना है कि कई समुदायों में बच्चे ही अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं।
It's very easy to, you know, cross the road and go and assist your father. But here that, you know, we have this thing called the tyranny of distance, and sometimes children buy properties quite far away from the city. So it becomes really a very difficult situation for children to help their parents when they need practical support.
रफेला लोपेज का कहना है कि लोगों को इन सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए.
They have paid for it. They have contributed to the economy of the country, and it is their right, and they should use these services which are there to make life in the community easier, and so they can stay at home longer.
अब हर प्रोग्राम की तरह माय एज्ड केयर भी बिना किसी दिक्कत के नहीं चलता है, परेशानियां तो आती ही हैं। इसलिए टेरी का कहना है कि लोगों को अपनी चिंताएं, तकलीफें और फीडबैक आदि देनी चाहिए।
It's so important. We are taught as multicultural individuals, don't complain. It's not the polite thing to do. In our community, we should be grateful for what we have, even if it's not perfect. But the Australian government and the Commonwealth is saying, no, we want to hear from you. Because every time we tell them something goes wrong, that's their job and their responsibility to fix it.
जनवरी 2017 में हेल्थ और एज केयर के फेडरल असिस्टेंट मंत्री केन वॉट ने 8.5 मिलियन की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की मल्टीपर्पज सर्विसेज प्रोग्राम के लिए, जिससे प्रादेशिक क्षेत्रों, ग्रामीण और दूर दराज समुदायों को एज्ड केयर मिल सके। उनका कहना है कि एज्ड केयर सहायता देश भर में सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। माई एज्ड केयर प्रोग्राम पर अधिक जानकारी के लिए myagedcare.gov.au पर जाएं या 1-800-200-422 पर संपर्क करें, और दूसरी भाषाओं में इसकी जानकारी के लिए myagedcare.gov.au/other-languages पर जाएं।